हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। आज हम सब खुदावंद अपने खुदा के जुड़ चुके और खुदावंद का शुक्र करें उसकी गई दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए और उसके कलाम के लिए जो हर धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। हम सब दुआ करेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं अगर तेरी नेहमतों बरकतों तेरी शफकत और तेरी खुदा खुदा रास्तबाजी के कामों को गिनना शुरू करें तो वो बयान से बाहर हैं, वो अनगिनत हैं। लेकिन आज की सुबह खुदावंद हम शुरुआत करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की नेहमतों के लिए, सारी रात की हिफाजत निगहबानी के लिए। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं इन तमाम खानदानों के लिए जो यहां पर मौजूद हैं। तेरी तारीफ करता हूं, सबको छू, बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आज जब कलाम का बीज बोया जाए तो एक एक जिंदगी बरकत पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। जो बहन भाई बाइबल मुकदस लेकर आए हैं वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 19वां बाब, हम उसकी 45 और 46 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि कल हमने देखा यीशु यरूशलम पर रोता है और यरूशलम पर उसका इजहार क्या है कि काश के तू अपनी सलामती के वक्त को जानता पहचानता पर तुमने उसे ना जाना। इसलिए यीशु मसीह की फिक्र और उसकी मोहब्बत के बारे में हमने सीखा था। आज हम देखेंगे यीशु हैकल में जाकर क्या कहता है और 45वीं आयत में यूं लिखा है, फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जब हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह हैकल में जाता है यरूशलम पर रोने के बाद कि उन्होंने क्या किया है, खुदा के उस रहम को, उस तरस को, उस मोहब्बत को जो बागे अदन से लेकर अब तक और आने वाली तमाम पुश्तों के लिए मौजूद है, उन्होंने इनकार कर दिया। जब जब हम खुदा की फिक्र और दिल को देखते हैं और इंसानों के दो जवाब होते हैं, खुदा की फिक्र और खुदा की मोहब्बत और खुदा की जो क्या है जी नसीहत खुदा करता है, दो जवाब इंसान देते हैं। चाहे पुराने अहदनामों में चले जाएं, नए अहदनामों में चले जाएं, आज के दौर में जिंदगी बसर करते हुए देखें, इंसानों का दो तरह का जवाब होगा। ताबेदारी में वो कहेंगे कि खुदावंद तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो, और या कहेंगे कि नहीं, हम अपनी मनमानी करेंगे। सो हैकल में यीशु मसीह जाता है और जब हैकल में यीशु मसीह पहुंचता है तो क्या होता है, वहां पर बेचने वालों को देखता है। इन बेचने वालों को जब हम देखते हैं तो ये बेचने वाले कौन हैं, वो लोग हैं जो उस दौर के रबियों फकीयों फरीसियों और काहिनों के बदौलत मुकरर कर दिए गए थे कि क्या किया जाए जी, लोगों को सहूलत तो दी जाए लेकिन सहूलत के साथ साथ क्या किया जाए जी, मुनाफा कमाया जाए। और वो मुनाफा क्या था जी, ना हक मुनाफा था। जब हम देखते हैं इसी हिस्से को मत्ती की झील में तो वहां पर भी यीशु मसीह इस बात को बड़े वाजह तौर पर बयान करता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस तरह खुदा के घर की तौहीन करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने घर के बाहर जो हैकले सुलेमानी थी, जानवर बेचने का कारोबार, पैसे तब्दील करने का कारोबार, उसके बाद फिर वो कुर्बानी से तल्लक रखने वाली तमाम चीजों को اگر کوئی اپنے گاؤں سے خریدتا اپنے شہر سے خریدتا تو وہ ایک یا دو پیسے میں مثال کے طور پر ملتی تھی، لیکن اگر ہیکل سے خریدتا تھا تو اسے وہ دگنا دینا پڑتا تھا، کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے جی، جن کو مقرر کیا گیا تھا انہوں نے یہ جھوٹ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا جی، یہ ہیکل میں سے دیا جانے والا کیا ہے جی، چیز ہے، اس لیے یہ بہت بہترین ہے، یہ پاک کی ہوئی ہے، یہ عمدہ ہے، یہ اچھی ہے، اس لیے تمہیں اس کے لیے زیادہ پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ کہ انہوں نے وہاں پر پانی، سرائے، جانور، بھیڑ، بکریاں اور تمام جو قربانیاں گزرانی جاتی تھی، کبوتروں کے پنجرے، پیسے تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے بجائے روپے کا روپیہ واپس کرنے کے لیے انہوں نے 10 روپے کے پیچھے 8 روپے واپس کرنا لوگوں کو کیا کر دیا جی، شروع کر دیا۔ تو یسوع مسیح جب اس سب کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، جب ہم متی کے اس بیان کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا۔ کن سب کو نکال دیا؟ جب ہم 21 باب متی کی انجیل 21 باب اس کی 12 آیت سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور سرایوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چونکیاں الٹا دی اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ یسوع مسیح نے جب لوگوں کی حالت دیکھا تو اس پر رویا، جب اس نے اپنے گھر کو جس مقصد کے لیے خدا نے اپنے آپ کو سلیمان بادشاہ پر، اس سے پہلے سلیمان بادشاہ پر، اپنے آپ کو موسیٰ پر ظاہر کیا کہ تو میرے لیے ایک خیمہ بنانا، اس خیمے میں اس طرح تمام چیزوں کو بنانا، پہلے حصے میں لوگ کیا کریں گے جی، قربانی چڑھائیں گے، دوسرے حصے میں کیا کریں گے جی، لوگ میرے حضور جھکیں گے، اور وہ تیسرا حصہ جو پاک ترین مکان ہوگا جہاں پر میں کیا کروں گا، کاہن سے گفتگو کیا کروں گا قوم کی رہنمائی کے لیے۔ سو ہیکل، گرجا، دعا گاہ کیا تھی جی؟ دعا کا گھر تھا، خدا کے ساتھ بیٹھنے، اٹھنے، رفاقت رکھنے، اس کی آواز کو سننے کا ذریعہ تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کاروبار بنا لیا۔ جیسے آج بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کا نام استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے اور خدمت کو خدمت نہیں بلکہ کیا بنایا ہوا ہے جی، کاروبار۔ وہ اسے کاروبار سمجھتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں روحوں کی، نجات کے پیغام دینے کی، مسیح کی منادی کرنے کی، اگر فکر ہے تو کس طرح نمائش کی جائے تاکہ مسیح کے نام پر کیا کیا جائے جی، کاروبار۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے جب دیکھا تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے میرے گھر کو کیا بنا دیا ہے جی، جو دعا کا گھر کہلاتا تھا، تم نے اس کو کیا کر دیا، ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا، ڈاکوؤں کی کھو سے مراد یعنی کہ وہ جگہ جہاں چوری چکاری ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کی کھو سے مراد کیا ہے؟ وہ ڈاکوؤں کا اڈا بنا دیا جہاں پر تمام لوٹ مار کی مال کو جمع کیا جاتا ہے۔ یاد ہے آپ کو وہ 40 چوروں والی کہانی، بچوں کو ٹی وی پر بھی دکھائی جاتی تھی کہ 40 چور کیا کرتے تھے، شہروں کو، گاؤں کو لوٹتے تھے، اور یہ ایک کہانی بنی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنا سارا سونا چاندی ایک جگہ پر اکٹھا کرتے تھے اور اسے کیا کہتے تھے جی، ڈاکوؤں کی کھو۔ انہوں نے کیا کیا، خدا کے گھر کو جو دعا کا گھر تھا، خدا کے گھر کو جو قربانی کی جگہ تھی، خدا کے گھر کو جو خدا نے سلیمان سے کہا تھا کہ میں نے تجھے چنا ہے کہ تُو میرے لیے گھر بنانا، ہیکل بنانا، اور اس ہیکل پر میری نگاہ لگی رہے گی، اور یہ گھر قوموں کے لیے دعا کا گھر ہوگا، قوموں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ اس مذبح پر سے، اس عبادت گاہ میں سے جو دعا سلیمان بادشاہ کی جائے گی، میری آنکھیں اس پر لگی رہیں گی۔ سو بنی اسرائیل قوم کے چرواہوں نے، لیڈروں نے، رہنماؤں نے کیا کر لیا، خدا کے گھر کو کیا بنا دیا جی، دا डाकुओं के खो बना दिया। सो यीशु मसीह उनको देखकर कोड़ा बनाता है, उनको निकालना शुरू करता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया। क्योंकि इसके पीछे हाथ किसका था जी, फकीयों, फरीसियों, रबियों का। जब हम मत्ती की झील में पढ़ते हैं तो मत्ती से और वजाहत से बयान करता है, वो कहता है अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया, लेकिन जब सरदार काहिन और फकीयों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशियाना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं। उन्होंने यीशु की बर्दाश्त नहीं की। इसलिए इस हवाले में देखते हैं यीशु हैकल की सफाई करता है, यीशु मसीह को याद दिलाता है कि मेरा घर दुआ का घर है, ना के कारोबार की जगह। आपको याद होगा यीशु मसीह ने क्या है कहा, लिखा है। यीशु मसीह इब्लीस से कितनी दफा आजमाया गया था 40 दिन और 40 रात के दौरान, कितनी दफा जी, 3 दफा। 3 दफा यीशु मसीह ने शैतान को किस तरह जवाब दिया था, क्या कहा था यीशु मसीह ने, लिखा है। क्या कहा था जी, लिखा है। मेरे साथ कहें, लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना करना। लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना करना। खुदावन यीशु मसीह ने अबलीस को जवाब देने के लिए जब उसने गलत रास्ता, गलत सोच, गलत तरीका इस्तेमाल किया तो यीशु ने कहा, लिखा है मेरे कलाम में। इसी तरह इन फकीयों, फरीसियों, रब्बियों और उस्तादों ने जो गलत तरीका इस्तेमाल कर लिया, यीशु ने उनसे क्या कहा, लिखा है कि मेरा घर क्या है जी, दुआ का घर है। इसलिए आज हमारे लिए इसमें से क्या सबक है, हमारे लिए इसमें से जो सबक है, आपको याद होगा जब यीशु मसीह को फकी फरीसी आजमाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि यीशु हमको बता हम क्या करें, क्या कैसर को जजिया देना रवा है। जजिया से मुराद यानी के जो हमारी आमदन है, जो हम महानावर कीमत, जो महानावर हम रुपया पैसा कमाते हैं उसके लिए क्या हमें देना चाहिए। तो उन्होंने यीशु को आजमाने के लिए क्या कहा जी, कि इसको फंसाते हैं, इसको क्या करते हैं जी, इस पर इल्जाम लगाते हैं ताकि यीशु का पत्ता काट दिया जाए। तो क्या हुआ, यीशु को वो आजमाने के लिए आते कहते हैं कि हमें कैसर को जजिया देना चाहिए, उसको टैक्स देना चाहिए, उसको महसूल देना चाहिए या नहीं। तो याद है यीशु मसीह ने क्या उनसे कहा था, यीशु ने कहा कि मुझे एक सिक्का दो। और जब वो सिक्का लिया तो उस सिक्के को दिखाया और सिक्के को दिखाते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा, इस पर किसकी तस्वीर है, किसकी तस्वीर थी जी, मेरे साथ कहे कैसर की। और जब कैसर की तस्वीर वाला सिक्का दिखाया तो यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो। दूसरे लफ्जों में उस दौर का जो शहनशाह था जिसका नाम कैसर अगस्तस था, उसको कहा गया जी जो उसकी हुकूमत के मुताबिक जजिया बनता है, टैक्स बनता है, रुपया पैसा बनता है, जो उसके लिए मुकर्रर है, तुम उसे दो, उसकी नाफरमानी ना करो। वो यीशु को फंसाना चाहते थे, यीशु उनको कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो, क्योंकि उसकी हुकूमत है उस इलाके में। और यीशु मसीह ने दूसरी बात क्या कही थी, जो खुदा का है वो किसको दो जी, खुदा को दो। ये जवाब था यीशु मसीह ने उन फंसाने वालों को कि अगर तुम इस शहर, इस मुल्क में रहते हो तो जो हुकूमत का बनता है उसे दो, क्योंकि उस सिक्के पर उसकी मोहर है जो उस दौर का बादशाह है। उसका चेहरा बना हुआ है उस सिक्के के ऊपर कि वो कैसर बादशाह की क्या है जी मोहर है उसका चेहरा है। और यीशु मसीह दूसरे लफ्जों में यह सवाल कर रहा था, तुम किसके चेहरे और शबीह पर बने हो? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारी नसें, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारे बनाने वाला कौन है और तुम किसकी सूरत और शबीह पर बनाए गए हो? जब यीशु ने कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो, इसलिए यीशु मसीह ने उसे कहा कि जो हुकूमत का है दुनियावी है वो दुनियावी बातों में, और जो तुम्हारा बदन, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी जान, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बोलना किसका है? खुदा का है। यीशु मसीह ने उनके इस सच को जो झूठ में था उसको वाज़ेह किया। आज हमसे भी यीशु मसीह यही सवाल करता है, जो दुनिया में हम रहते हैं, जो दुनिया का बनता है दुनिया को दे और जो खुदा का है वो खुदा को दे। यहां पर यही बात यीशु मसीह कह रहा है, मेरा घर जब मैंने सुलेमान से बात की कि तुझे मैंने चुना है कि तेरे वसीला से हैकल को बनाऊंगा, और वो हैकल क्या होगी जी? कौमों के लिए दुआ का घर होगा, और इस जगह पर हर एक कबीले के लिए मैं बरकत जारी करूंगा। ये वो जगह होगी जहां पर क्या किया जाएगा जी, मेरे कलाम की वो तस्वीर जाहर की जाएगी। जब बर्रा कुर्बान किया जाएगा तो ये एक बर्रा जो कुर्बान किया जाता है साल में एक दफा, एक वक्त आने वाला है कि खुदावन खुदा क्या करेगा, अपने बर्रे यीशु मसीह को गुलगत्ता की पहाड़ी पर कुर्बान करेगा और सबके लिए निजात का रास्ता खोल देगा। तो यीशु ने कहा मेरा घर जो हैकल है वो दुआ के लिए है, लेकिन तुमने उसे क्या किया, डाकुओं की खो बना दिया। आज हमसे ये सवाल है, हम उसका घर हैं। खुदा कहां पर रहता है जी? हमारे अंदर रहता है। पालूस रसूल क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो जी, मकदस हो, हैकल हो, गिरजा हो, रहने की जगह हो। कहीं हमने उसके रहने की जगह को डाकुओं की खो तो नहीं बना दिया? कहीं हमने खुदा के रहने की जगह को किन बातों से भर लिया है जो दुनियावी हैं? कहीं सच की जगह झूठ ने जगह तो नहीं ले ली? कहीं तर्स की जगह गुस्से ने जगह तो नहीं ले ली? कहीं माफी की जगह तकब्बर ने और नाराजगी ने जगह तो नहीं ले ली? इसलिए हमें अपने घर पर जो खुदा का है गौर करने की जरूरत है। यीशु ने कहा मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने उसको क्या किया, डाकुओं की खो। इससे पहले वो खुदा के घर को डाकुओं की खो बनाते, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था जी, ना पा कर लिया, सुन कर लिया, दुनिया की बातों में गुमराह हो गए। इसलिए जो कैसर का है, हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें वो क्या है जी, देना होगा। दुनिया में रहते हुए अपने बच्चों को तालीम दिलवानी होगी, दुनिया में रहते हुए दुनिया के तरीकाकार से चलना होगा कि कानूनी तौर पर क्या है, गैर कानूनी क्या है, उनके मुताबिक। लेकिन उससे बढ़कर हमें क्या करना होगा, खुदावन खुदा के कानून के मुताबिक चलना होगा, क्योंकि हम उसकी सूरत और शबीह पर बनाए गए हैं। पदेश एक बात में क्या लिखा है, खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाए, और खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जिंदा जान हुआ। हम किसकी सूरत पर बनाए गए हैं जी? किसकी सूरत पर? सब कहेंगे किसकी सूरत पर बनाए गए हैं? हम खुदा का क्या है जी, घर हैं। हम खुदा का क्या है जी, मकदस हैं। हम खुदा की क्या है जी, हैकल हैं। अब सवाल करना है अपने आप से, कि इनके बारे में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा उनको निकालना शुरू किया, जो कबूतर बेचने वाले थे, जो खरीदो फरोख्त करने वाले थे, जो पैसे तब्दील करने वाले थे, उन सबको यीशु ने निकालना शुरू किया। वैसे ही यीशु हमारी जिंदगी में भी आता है और उन तमाम चीजों को निकालना शुरू करता है। सो आज आपकी जिंदगी में क्या चीज है जो यीशु निकालेगा, क्या उसे निकालने देंगे? झूठ को, तकब्बर को, नाराजगी को, गुस्से को, हसद को, नाफरमानी को और हर तरह की नाराजगी को, कौन सी चीज को आप निकालने देंगे कि यीशु हमारी सफाई करे? क्योंकि वो क्या है जी, हमारे दिलों को धोकर पाक और साफ करता है। इसलिए खुदावंद खुदा हम सबको तौफीक दे कि जब जब यीशु हमारी जिंदगी में आए, जब जब वो हमारी हैकल में क्या करे जी, तौरा करे, हमसे कलाम करे, हमसे कहे कि मैंने तुमको अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर अपना मकदस, अपना घर, अपने रहने की जगह बनाया है, इसलिए तुम में से झूठ को जाना होगा, तुम में से मैं सच्चाई को भर दूंगा, तुम में से नाराजगी को निकलना होगा, मैं तुम में से तुम में रास्ती को भर दूंगा, तुम सख्त दिल हो मैं तुम्हारे दिल को नरम करूंगा, तुम झूठ बोलते हो मैं झूठ को निकालूंगा। तो यीशु मसीह हमारी सफाई करना शुरू कर देता है अगर हम उसे करने देंगे। इसलिए आज की सुबह यीशु हैकल में जाता है, आज की सुबह वो हमसे कलाम कर रहा है। आए हम खुदा के जुर झुकें और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, कहीं हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दुनियावी कूड़ा क्रिकेट तो नहीं है जिसके बारे में आज यीशु हमसे, खुदा का पाक रूह हमसे कह रहा है कि उसे जाना होगा, हमारी जिंदगी के उस हिस्से में से उसे निकालना होगा, ताकि यीशु मसीह कहे कि हाँ तुम मेरा घर हो। खुदा बाप सबको छू बरकत दे और आज तेरा पाक रूह सबकी रहनुमाई करे कि हमने कौन सी ऐसी बातों को अपनी जिंदगी में, अपनी हैकल में जो तेरे हाथ से बनी हुई है, जगह दी हुई है, ताकि हम उसे तेरा ही मकदस बनाए, इस दुनिया की बातों में मगन ना हो। छू बरकत दे और खुदावन खुदा रहनुमाई कर, ये सब कुछ मांगता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।